वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। साकार की दिन जब याद आए तो स्नेह में अखियां भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया।
ओम शांति। आज हम सभी के बीच में हमारे भ्राता ब्रह्मा कुमार मोहन बैसिंगर जी पधारे हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। सन 1962 में जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे थे अपनी किशोर अवस्था में, तब धनबाद से आपको बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ। आप जियोफिजिस्ट के रूप में ONGC में कार्यरत थे और साथ ही साकार मात पिता की भी आपको बहुत बहुत पालना मिली है। विशेष आप राजू का एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत हमारी साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग है, उसके आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपने अनेक अभियान निकाले हैं, एनवायरमेंट अभियान कैंपियन, डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपियन और साथ ही क्लीन द माइंड क्लीन द अर्थ, उसका भी आपने अभियान निकाले हुए हैं। आपको नेशनल अवार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं, भारत रत्न का भी अवार्ड आपको प्राप्त हुआ है और साथ ही हमारे जितने भी म्यूजियम बने हैं, सेंटर्स, म्यूजियम, एग्जीबिशंस, मेले, अभियान, उसमें आपका बहुत ही योगदान रहा है। और साथ ही हमारे साकार बाबा की जब अंतिम स्टेज कर्मातीत स्थिति 18 जनवरी 1969, तब आपको बहुत ही बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप उसी दिनों में आप यहाँ पर मधुबन में थे, तो उसका विशेष अनुभव आज हम सभी को सुनाएंगे। और बाबा के बहुत ही आप अनुभवी रत्न हैं। 1996 में आपने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ली, आप ONGC में सुपरिटेंडेंट के रूप में सेवारत थे। उसी समय आपने एक बहुत ही क्रांतिकारी संकल्प के साथ आपने रिटायरमेंट लिया और उसी समय ज्ञान सरोवर परिसर में एकेडमी फॉर द बेटर वर्ल्ड हमारी एकेडमी बनी थी, उसके आप डायरेक्टर हैं। और सभी विंग्स के जो भी प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, रिट्रीट होते हैं, उसके भी आप प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो ऐसे महानुभव आज हम सभी के बीच में है। आज का विषय है आत्मशुद्धि के लिए गहन तपस्या की जरूरत, उसके पर आप प्रकाश डालेंगे। प्रातः मोहन भाई, ओम शांति।
ओम शांति। एक बार हम सभी मिलकर के उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा हम सब ने सुना है यज्ञ में साकार बाबा सबसे बुलवाया करते थे, गहरी सांस अंदर लेकर के और फिर धीरे धीरे सांस निकालते हुए और ओम की ध्वनि करते हुए ओम शांति बोलेंगे, श्वास अंदर सब खींचेंगे। शांति। आत्म शुद्धि का एकमात्र उपाय गहन तपस्या, यह विषय दिया गया है। और साथ ही अभी जब हमारी मीठी नंदा बहन जी परिचय दे रहे थे तो उसमें उन्होंने जो बताया उसमें मैं एक छोटा सा करेक्शन कर दूं कि एक तो सबसे बड़ा अवार्ड जो हम समझते हैं हमें अपने जीवन में प्राप्त हुआ है वो यही है कि 18 जनवरी को जब साकार ब्रह्मा बाबा ने अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया तो उन अंतिम दो दिनों में 17 और 18 जनवरी को उस अंतिम कर्मातीत अवस्था देखने का हमें मौका मिला। हमने अपनी आंखों से बाबा की कर्मातीत अवस्था या प्रकृति जीत मन जीत अवस्था देखी और उसे हम समझते हैं भले लौकिक दुनिया में कोई अवार्ड मिलते हों उसमें भी एक करेक्शन है कि हमें जो लौकिक में भारत सरकार की ओर से मिला वह था पर्यावरण श्री। बहन जी ने शायद गलती से भारत रत्न बोल दिया, ये तो बहुत बड़ा अवार्ड होता है और लेकिन पर्यावरण के क्षेत्र में बाबा ने कार्य करवाया उस रीति से वह मिला तो मैंने सोचा कहीं किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे तो उसकी एक क्लैरिटी करते हैं कि आज की मुरली तो सबने सुनी ना। आज की मुरली में ही आज का विषय पूरा समाया हुआ है कि उसमें बाबा ने दोनों बातें कही हैं जो आज के विषय के दो पहलू हैं, एक है आत्मशुद्धि और दूसरा तपस्या। स्लोगन ही तपस्या के ऊपर था। क्या स्लोगन था आज का? सेकंड में न्यारे और प्यारे, उस स्थिति को प्राप्त करना ही उसी को क्या बोलेंगे? तपस्या। उसी वही तपस्वी मूरत है जो एक सेकंड में न्यारा और प्यारा हो जाता है। और आत्मशुद्धि के ऊपर भी बाबा ने आज कई चीजों पर प्रकाश डाला कि जब तक आत्मा में कुछ तमोप्रधानता का किचड़ा है तो आत्मा उतना परमात्मा की तरफ आकर्षित नहीं होती और जब ये किचड़ा पूरा निकल जाता है तो आत्मा सत्व प्रधान बन जाती है और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके वापस अपने घर चली जाती है। तो इनके ऊपर आज हम थोड़ा सा उस रेफरेंस में विचार करते हैं जो साकार, क्योंकि हम सबके सामने यज्ञ में केवल एक ही आत्मा है अभी तक जिसने की संपूर्ण आत्मशुद्धि की और गहन तपस्या को प्राप्त कर कर्मातीत अवस्था को पाया। कौन है वो आत्मा? ब्रह्मा बाबा। क्योंकि जिसने संपूर्ण आत्मशुद्धि कर ली होगी उसका यहां इस दुनिया में पुनर्जन्म नहीं होगा हिसाब किताब चुकतू करने के लिए अथवा कोई भी पार्ट बजाने के लिए। और जैसा हम सब जानते हैं कि बाबा ही एक आत्मा है जो सूक्ष्म वतन में हमारे लिए ठहरे हुए हैं, बाकी चाहे मम्मा हो चाहे दादियां हो सबको थोड़ा बहुत भी भले रिंचक मात्र है और इसे हिसाब किताब भी नहीं कहेंगे, सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन लिया है लेकिन फिर भी पुनर्जन्म में तो है, इस साकार शरीर में है। तो संपूर्ण आत्मशुद्धि जो है, आत्मा के बिल्कुल सब जो जंक निकली हुई है वो निकाल करके बाबा ने जो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया और इसी को ही इसी के आधार पर ही वो बाबा जो है संपूर्ण विकारों को भस्म कर करके कितने वर्षों में बाबा ने स्थिति को प्राप्त किया? कितने साल में? 33 वर्ष में, 33 ईयर में ओनली। 1937 में ज्ञान अपना शुरू हुआ, साकार बाबा को निमित्त बना करके शिव बाबा ने कार्य प्रारंभ किया तो 36 में आए और 1969 में जनवरी में 69 में 33 वर्ष भी जैसे पूरे नहीं लेकिन इतने समय में बाबा ने अपनी जितने भी आत्मा के पुराने विकर्म हैं उनको भस्मीभूत करके स्थिति को प्राप्त किया। तो वो आत्मशुद्धि का क्या क्या मार्ग था। पहली बात तो आत्मशुद्धि की परख क्या है। कोई भी चीज होती है उसकी अगर परख होती है, उसका कोई मेजरमेंट होता है, नाप तौल कर सकते हैं, तो उस चीज को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। मानो शरीर ठीक नहीं है, थोड़ा बुखार लग रहा है, थर्मामीटर से देखा, नापा, भाई हाँ भाई 97 से ज्यादा है, 99, 100, 101, 102, 103 है, बुखार है, मेजरमेंट। तब ये शरीर में थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल नहीं है, ब्लड प्रेशर नापा, पता चल गया कि हाँ हाई है या बहुत लो। ऐसे ही क्या क्या मेजरमेंट है हमारे, जिससे बीच बीच में हम अपना ऑडिट कर सके, अपने को जांच कर सके कि हमारी आत्मशुद्धि होती जा रही है और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बीच बीच में अपना ऑडिट करना एक तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुषार्थ करते चले और हम समझे सब ठीक है, लेकिन जितना बाबा चाहता है उतना अगर नहीं है तो उसकी भी उतनी संपूर्ण प्राप्ति नहीं होगी। तो जब भी कोई भी पेपर आते हैं, तो अभी वर्तमान समय के मुताबिक, समय प्रति समय बाबा हमें समय की चेतावनी देते रहते हैं, तो वर्तमान समय बाबा ने बताया है, अभी बच्चों के सामने दो पेपर विशेष आएंगे, आते हैं भी हैं। कौन से दो पेपर? सबसे बड़ा है अपने शरीर का पेपर, क्योंकि ये शरीर हमारा सबसे निकट का साथी है इस जन्म का। तो इस कारण से शरीर का पेपर बच्चों के सामने बहुत बड़े रूप में आएगा, क्योंकि बचे हुए हिसाब किताब सब इस शरीर से है। संबंधों के भी पूरे हो जाएंगे, तन मन धन जो कुछ भी है, लेकिन शरीर का हिसाब जैसा ब्रह्मा बाबा को देखा, मामा को देखा, दादियों को देखा, अंतिम समय तो एक तो इसके लिए हमें तैयारी करनी है शरीर का पेपर। क्योंकि ये कोई ना समझे भाई मैं तो अभी जवान हूं, युवान हूं, मेरे कोई बीमारी की बात नहीं, अच्छी हेल्थ है, लेकिन जो इतने 63 जन्मों के विकर्म है, आत्मा जो तमोगुणी हो गई है, तो उसके लिए क्या करना है। साकार बाबा खुद उदाहरण थे और हमने देखा कि साकार बाबा कैसे इस शरीर के पेपर से पार हुए। जब भी कोई पार्टी आती थी, बाबा यहां मिला करते थे, या तो झोपड़ी में मिला करते थे, या अपने कमरे में, या हिस्ट्री हॉल में। जैसी पार्टी होती थी, 2-3-4 होते थे तो अपने कमरे में मिल लेते थे, 7-8 लोग, कुछ 8-10 होते थे तो झोपड़ी में, और जब थोड़ी बड़ी पार्टी, बड़ी माने उस जमाने में तो 15-20 की पार्टी भी बहुत बड़ी होती थी, तो हिस्ट्री हॉल में। तो देखा कि बाबा जो है उस अपने स्थिति को, बाबा ने कैसे संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त किया, तो टाइम दिया हुआ होता था भाई 10 बजे दिल्ली पार्टी मिलेगी, 10:30 बम्बई पार्टी, ऐसे ऐसे। तो ब्राह्मणी आके बाबा के सामने खड़ी हो जाती थी कि बाबा पार्टी लाए हूं। अब बाबा अपनी मस्ती में जैसे मस्त आंख खुली हुई है और बाबा देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे, आत्मा यानी देह भान से पड़े, विदेही स्थिति। तो ब्राह्मणी आ जाती थी, तभी भी कई बार बाबा को भान नहीं रहता था, तो वो कहते बाबा बाबा, तो बाबा को कई बार थोड़ा सा जर्क जैसा भी लगता था, हाँ बच्ची आ गई हो, हाँ बाबा फलानी पार्टी लाई हूं, अच्छा अच्छा ले आओ। तो बाबा जैसे न्यारे थे शरीर से, जो आज बाबा ने बताया ना तपस्या, एक सेकंड में न्यारे और प्यारे, तो शरीर से न्यारे रहते थे, और फिर जब पार्ट बजाना होता था यहाँ पर, तो बाबा देह में आए, उसके बाद सबसे बाबा मिलते भी थे, टोली भी खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, और फिर बाबा जैसे देह से न्यारे हो जाते थे। तो एक सेकंड में देह में आना और देह से न्यारे हो जाना, ये प्रैक्टिकल दिखता था। मानो बाबा मिले, और जब बाबा मिलते थे ना, आपने देखा होगा, इसका भी प्रमाण क्या है कि मैं देह से न्यारा हूं या देह में आया हुआ हूं, प्रमाण होना चाहिए हर चीज का। तो जैसे दीपक जलता हुआ होता है, उसके सामने कोई बुझा दीपक आए वो भी जल जाएगा। बाबा भी कहता है कि कट अगर सुई पर नहीं होगी जंक तो खींच लेगा चुंबक तुरंत ही। ऐसे ही जब बाबा मिलते थे, आओ आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, ऐसे बाबा हाथ भी फैला देते थे और बच्चे बाह में आ जाते थे। और ब्यूटी क्या थी कि जैसे ही जो आता था वो खुद देह से न्यारा हो जाता था। ये चुंबक का सा प्रभाव है, क्योंकि बाबा इतना बड़ा मैग्नेट, जैसे बाबा ने इसका अभ्यास किया हुआ था, मैं आत्मा हूं, और इसीलिए जिससे भी मिलते थे, जिसको भी स्पर्श होता था, जिस पर भी बाबा की दृष्टि पड़ती थी, वो आत्मा भी देह से न्यारी थोड़े समय के लिए हो जाती थी। फिर क्या होता था, फिर उसके बाद बाबा ऐसे थपथपा के आओ बच्चे आओ आओ, जैसे फिर से देह में ना बाबा बच्चों को लाता था, टोली खिलाते थे हालचाल, फिर एक जाता था, दूसरा आता था, तीसरा आता था, टर्न बाय टर्न बाबा से मिलते थे। तो भाव क्या है तपस्वी का, कि तपस्वी की निशानी ये होगी, जितना जितना हम बढ़ते जाएंगे हमारी आत्मा की शुद्धि होती जाएगी, कि एक तो ये हम केवल अपने तक ही सीमित नहीं रहेंगे, जिस आत्मा को भी दृष्टि देंगे, जिसके भी संबंध संपर्क में आएंगे, उसे भी हम देह से न्यारा कर देंगे, उसे आत्मा अनुभूति होगी, उसे भी तपस्वी जीवन का उस पर ये प्रभाव। तो ये एक तो बाबा का देखा, जो हम सबको पुरुषार्थ करना है और चेक करते रहना है कि मैं दूसरी आत्माओं को देह अभिमान में ले आता हूं या देही अभिमानी की स्थिति उन्हें प्राप्त होती है, एक तो ये चेक करना है। तो ये शरीर का पेपर पार करने के लिए, उसके लिए जब चाहे हमें पार्ट बजाना है देह में आए, और जब पार्ट पूरा हुआ या थोड़े समय फुर्सत है देह से न्यारे हो जाए, उसके बाद फिर जब पार्ट बजाना है तो दिन में नंबर ऑफ टाइम्स हम देह में आने का जाने का पार्ट बजाना और न्यारे होना वो कर सकते हैं। एक तो ये बाबा कर, तो ये है देह से, देह के कोई भी पेपर आएंगे अंत समय बहुत कष्ट होगा, दर्द होगा, देह के सारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे होंगे, और फिर उस समय अगर हम देह से न्यारे हो जाने का अभ्यास होगा तो देह में जितना कष्ट होगा वो हमें महसूस नहीं होगा। बड़ी दादी का भी, प्रकाशमणि दादी जी के पास हम लोग जाते थे, वहां पर नीचे शांतिवन में मिलते थे, और दादी को डॉक्टर बोलता था, दादी आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा, इस बीमारी में बहुत दर्द होता है। क्यों नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं नहीं दादी, आप हमारा दिल रखने को ऐसा शायद बोल रही हो। नहीं नहीं, जब भी थोड़ा सा मुझे दर्द की वो होती है मैं देह से न्यारी हो जाती हूँ, बाबा मैं आत्मा अलग हूँ, अलग हूँ, न्यारी हूँ, न्यारी हूँ, ऐसा कहते कहते बिल्कुल मैं न्यारी हो जाती हूँ, फिर शरीर में जितना भी दर्द होता रहे मुझे अनुभव नहीं होता, आराम से सो जाती हूँ, कोई कष्ट नहीं होता। तो इसलिए तपस्वी जीवन का क्लैरिफिकेशन माइंड में बिल्कुल होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम किधर बढ़ रहे हैं, और पुरुषार्थ की भी क्लैरिटी होनी चाहिए आत्मशुद्धि की। और उसका यही होगा कि जैसे ही हम बैठेंगे ना योग में, और बस योग से आत्मा जैसे शरीर से न्यारी होके बाबा की तरफ तुरंत ही बुद्धि योग लग जाएगा, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चुंबक जैसे सुई को खींचता है इस तरीके से। दूसरी बात आत्मशुद्धि का, एक आज भी बाबा ने कहा, जैसे बादल, बादल क्या है, यह शुद्धि का बहुत बड़ा प्रमाण है। सागर कितना खारा होता है, कोई पानी पी नहीं सकता, खारे की भी एक्सट्रीम स्टेज है, और जब वो गर्मी से, सूर्य की गर्मी से बादल बनते हैं, पानी खींचता है ऊपर, और वो पानी बरसता है तो जो बरसात का पानी होता है वो प्योरेस्ट माना जाता है, डिस्टिल्ड वाटर माना जाता है, केवल शुद्ध ही नहीं अति शुद्ध, तो वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो देखो खारापन सारा निकाल दिया, बाबा भी तो यही कर रहा है, हमारी आत्मा का सारा खारापन, अशुद्धि, सारे विकार वो निकाल रहा है और शुद्धता की चरम सीमा में ले जा रहा है। लेकिन उसके लिए आवश्यक क्या है, सागर का पानी से वो सूर्य की गर्मी आवश्यक है, जितना सूर्य की गर्मी होगी और वो शुद्धि करेगी। वैसे भी कहते हैं कोई चीज शुद्ध की जाती है तो किस में डाली जाती है, अग्नि में डाली जाती है। तो ये योग भी एक अग्नि है, तो इसीलिए ये अग्नि में डल करके कैसे आत्मा शुद्ध हो रही है, इसीलिए बाबा कहता है ना, कौन सा इसमें कौन सा उदाहरण देता है, कौन सा योग होना चाहिए, ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी की कहानी जानते हैं क्या है, देखो हिमाचल प्रदेश में ना, जहां पर हमारी कैलाश बहन उस साइड से आए हैं, वहां पर एक ज्वाला जी का मंदिर है, कईयों ने देखा भी होगा शायद। तो मैं जिस कंपनी में था ONGC में, तो वहां ONGC में ना उनका काम है जमीन से तेल और गैस निकालना, सर्वे करना। तो हमने भी ये सुना है, हमसे भी पहले जो हुआ करते थे, हमने भी ONGC 1967 में ज्वाइन की, उससे पहले की बात है ये। तो वहां पर सर्वे हो रहा था, तो लोग सर्वे करते करते हिमाचल में देखा कि उस जगह जमीन के नीचे बहुत गैस के भंडार हैं। तो उन्होंने देखा और वहां पर ये ज्वाला जी के मंदिर की बहुत मान्यता थी। एक मूर्ति है थी पहले, अभी तो पत्थर जैसा रह गया है, वो मूर्ति थी, उसके मुंह से हमेशा ज्वाला निकला करती थी। और जिनसे पूछते वो कहते थे मेरे दादा परदादा उनके टाइम से ये ज्वाला निकल रही है, एक सेकंड भी कभी बुझी नहीं है। तो हमारे लोगों ने सर्वे किया था ONGC वालों ने, उन्होंने पता चल गया कि यहाँ नीचे गैस है और ये गैस जल रही है। तो वहां मालूम करके पहले उन्होंने बताया तो लोग थोड़ा नाराज हो गए कि ये कैसे हो सकता है, ये तो ज्वाला माता की महिमा है, कृपा है, उनकी शक्ति है कि जो ज्वाला निकल रही है आप इसे बुझा के दिखाओ, एक बार भी एक सेकंड में नहीं बुझी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लोग उन्हें थोड़ा नाराज हुए, तो बड़े ऑफिसर्स को बुलाया गया। तो वहां उनके संतुष्टता के लिए उन्होंने देखा नीचे गैस आ रही है, और किसी पुराने जमाने में किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने पुजारी वगैरह कोई ऊपर मूर्ति बना दी, तो जमीन से वो गैस लीक हो रही थी, तो मूर्ति बना दी, तो उसके मूर्ति के मुंह से तो ज्वालामुखी इसीलिए नाम पड़ गया। तो उन्होंने गैस का वो उसके बीच में एक वाल्व लगा दिया, है ना, वाल्व होता है, और उन्हीं के सरपंच को ही बुला करके कहा कि आप जरा इसे ये ज्वाला निकल रही है घुमाओ इसे। तो उसने थोड़ा घुमाया, बंद हो गई वाल्व, तो गैस निकलनी बंद हो गई, तो वो ज्वाला बुझ गई। फिर उसे कहा खुद ही कि अच्छा आप इसे उल्टा घुमाओ, खोला उसने फिर जला दी गैस, तो फिर जल गई। तो ज्वालामुखी बाबा का ताप, इससे हमें क्या शिक्षा मिली, हमारे लिए ज्वालामुखी का भाव यह है जो बाबा चाहता है, निरंतर कोई भी चीज अगर निरंतर होगी तो उसका प्रभाव होगा, और बीच में थोड़ा एक सेकंड को भी अगर वो बंद हो गई ना तो बंद हो गई, फिर से उसे जलाने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये निरंतर का भाव बाबा भी ये कहता है, तपस्या के लिए भी यही आवश्यक है। आत्मशुद्धि के लिए सबसे बड़ी ये 3 दिन की तपस्या करी, योग भट्टी करी, बहुत अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यक ये है कि हमारी चेकिंग रेगुलर प्रति घंटा ही होती रहे। वैसे तो बाबा प्रति मिनट बोलता है, लेकिन चलो उसमें प्रैक्टिकल में डिफिकल्टी हो, घंटे में 1 मिनट भी हो तो वो कंटिन्यूअस जैसे गैस की तरह ना वो चलता रहेगा, तो उसका रेगुलर प्रभाव रहेगा, तब तपस्वी जीवन बनेगा। तो इसके लिए ये देखो, कोई बीमार होता है ना तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसे देखा BP सब, उसको पहले ड्रिप चढ़ा देते हैं। ड्रिप में क्या होता है, ड्रिप में वो बूंद 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 गिरती रहती है और ब्लड में मिलती रहते हैं, तो उस व्यक्ति में एकदम शक्ति आ जाती है। एक बार में भी उसे गोली खिला दे 2-4 इकट्ठी उस ड्रिप के बराबर, वो नहीं होगा। इंजेक्शन भी दे दें वो भी पूरा का पूरा नहीं, लेकिन ये ड्रिप से क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड में जैसे पहुंचते हैं उसकी शक्ति। ऐसे ही निरंतरता ये तपस्वी जीवन के लिए और आत्मशुद्धि के लिए ये सबसे बड़ा आवश्यक है। कभी तो हम नशे में एकदम चढ़ जाए 3 दिन में, इसमें पूरा बहुत, और कभी कोई परिस्थितियां आए तो वो परिस्थिति के वशीभूत होके हम डाउन ना हो जाए, हमारी योग की याद की निरंतरता बनी रहे, एक तो ये बहुत आवश्यक है। फिर ये अपना चेक करते चले। और दूसरी बात, दूसरा पेपर बाबा ने कौन सा बताया, परिवार का पेपर। हमारा ब्राह्मण परिवार बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि समय प्रति समय पेपर अलग अलग होते हैं। बाबा ने और पेपर भी बहुत बताए हैं, भाई आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर होगा, आवश्यक वस्तुएं खाने पीने की नहीं मिलेंगी, प्रकृति के तत्वों का पेपर, पांच संस्कार जो विकार हैं उनका पेपर, पुराने संस्कारों का पेपर, ये सब पेपर तो आएंगे ही, लेकिन वर्तमान समय के मुताबिक एक अब अंतिम समय चल रहा है, तो शरीर का और परिवार का पेपर। क्या होगा परिवार का पेपर? क्योंकि ये राजधानी स्थापन हो रही है, तो इस राजधानी में ना देखेंगे कोई बहुत पुराने पुराने भी हैं, वो उन बड़ी स्लो गति है उनकी, या बैक जा रहे हैं, विकारों के कोई वशीभूत हो गए, कमजोरियां हैं, और नए नए हैं वो और फास्ट भी जा रहे हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। और ऐसा होगा कि बहुत पुराने भी बहुत तेज गति से आगे लगातार बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए उस समय हमारे मन में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए, अरे ये इतने 40 साल पुराने, 50 साल पुराने, इनके अंदर अभी भी क्रोध, ये अभी भी इनके अंदर ये खान पान का संस्कार, ये उनमें किसी कोई कमी देखें उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है, उसे कम पद पाना है, इसलिए उसके अंदर ये कमजोरी है। तो उस समय उस पेपर से हम कैसे पार हों, उसका बाबा ने दो मंत्र दिए हैं। पहला मंत्र कि जब किसी में भी हम ये संस्कार देखें, तो क्योंकि इन चीजों से हमारी आत्मा की शुद्धि यानी पुरुषार्थ की रफ्तार कम हो जाती है, तो जब भी किसी में ये देखें तो ये देखें उसके तीनों कालों को देखें, केवल वर्तमान काल ना देखें कि वर्तमान में ये कमजोरी है, नहीं, भाई तीनों कालों को, आज भले ये आत्मा कमजोरी के वशीभूत है, लेकिन ये वही आत्मा है जो आदि रतन है, वही आत्मा है जिसके जिसको सबसे पहली बात, आदि में इसका बहुत तीव्र पुरुषार्थ था, आज देखने में कम आ रहा है, कल फिर ठीक हो जाएगा। तो तीनों कालों की दृष्टि से देखें, केवल एक वर्तमान काल से नहीं। और दूसरा ये बुद्धि में सदा रहे कि ये भगवान की चुनी हुई आत्मा है, भगवान ने इसे सेलेक्ट किया। बाबा कई बार कहता है कि मैं आज जो यहां का साधारण से साधारण भी है, वो आज के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से भी महान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे चुना है, जरूर उस आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है। तो हम हर आत्मा में, जो भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे, हरेक में खूबी देखने का पुरुषार्थ करते चले, कमजोरी भी दिखे वो कहें ये तो पानी पर लकीर की तरह आज है, बस मन में उसकी कमजोरी का वर्णन मनन चिंतन कुछ भी ना हो, ये भगवान की चुनी आत्मा, और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए एक इस दृष्टिकोण से हम देखें। तो ये बाबा में ये खास देखा कि जब भी कोई आत्मा थी, बाबा पे ऐसे बड़े बड़े समाचार भी आते थे, फलानी आत्मा उसके इतने समय तक ज्ञान में चली, अब चली गई, कई बात, तो बाबा बस ड्रामा के पट्टे पर खड़े होके उस आत्मा को जैसे सकाश देते थे, बाकी हलचल और विचलित नहीं होते। दूसरी बात साथ में जो बाबा ने कहा है कि जितना जितना हम आगे चलते जाएंगे अपने संकल्पों को चेक करता है, क्योंकि सारी, कल परसों भी था ना, सारा का सारा खेल ही किस चीज का है, संकल्प से भी सूक्ष्म क्या चीज है, वृत्ति। परसों अव्यक्त मुरली थी ना, रुए गुलाब वाली, उसमें भी बाबा ने कहा ये सारा का सारा खेल है वृत्ति का, क्योंकि वृत्ति संकल्पों से भी सूक्ष्म है। सब कॉन्शियस माइंड, वो माइंड है चेतन माइंड, कॉन्शियस माइंड, मन बुद्धि संस्कार जो बोलते हैं, लेकिन उसका भी जो सब कॉन्शियस माइंड है, अर्थ चेतन अचेतन मन है, वो बहुत शक्तिशाली होता है, उसी को वृत्ति कहते हैं। तो इसीलिए वो जो अचेतन वृत्ति है उसे भी अपने को हमें चेक करते चलना है। बाबा ने एक सर्टिफिकेट तो बच्चों को दे दिया, कौन सा, कभी बच्चों में विकारी संकल्प तो नहीं चलते, लेकिन कौन से संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प। कौन सा है व्यर्थ संकल्प, बाबा ने उसमें भी ये बताया कि वर्तमान समय के प्रमाण, गुलजार दादी थोड़े दिन पहले यही मधुबन में क्लास करा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ संकल्प कौन सा है। व्यर्थ संकल्प अगर हम योग करने बैठे, बाबा को याद कर रहे हैं, हमारी बुद्धि सेवा की तरफ चली गई, किसी आत्मा के तरफ चली गई, भाई उसके ये सेवा करनी है, मतलब वो विकारी संकल्प नहीं है, लेकिन वर्तमान समय के प्रमाण वो व्यर्थ संकल्प है। वैसे व्यर्थ नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये व्यर्थ है। क्यों, क्योंकि मन पर मेरा कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब मन में बैठा हूं याद करने के लिए, पांच धाम का चक्कर लगाने के लिए, अलग अलग जगह मन को ले जाने के लिए, लेकिन उसकी बजाय मन मेरा अपने आप दूसरी तरफ भाग रहा है। ये जो है स्थिति, बाबा ने कहा ये भी व्यर्थ संकल्प। इसीलिए एक ये अपने को चेक करते चलना है कि हमारी स्थिति ऐसी हो, हम ये हमारे मन का भी हमें कब पता चलेगा, हम दूसरे की स्थिति को बदल सके। अग्नि में क्या गुण होता है जो आप सबने बताया ना, परिवर्तन, यानी अग्नि में जो चीज डाली जाती है उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा आपकी ज्वालामुखी स्टेज हो, यानी कि ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो, रोती हुई आत्मा आए, आपको देखे और पास हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए, आप उसका रूप परिवर्तन हो जाए आपके सम्मुख, आपके वाइब्रेशन उनके द्वारा, और वो शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। ये है ज्वालामुखी स्टेज की बात, आत्मशुद्धि की बात। ये एक अपने को और चेक करते चलना है कि हम किसी भी आत्मा को, और ये कब होगा, अगर किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी बायस्ड फीलिंग होगी हमारी पूर्व, उसके लिए कोई भी अगर चेतना में कोई बात होगी, अगर हमारे ये तो ऐसे है, ऐसा आत्मा है, ऐसी है, तो हम उसका रूप परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। हमारा माइंड जो है वो एकदम बिल्कुल न्यूट्रल हो, और वो कब हो सकता है, वो तब हो सकता है जब हमारे माइंड में ना कुछ क्षमा की शक्ति होगी, भूलने की शक्ति होगी। कहते हैं जब व्यक्ति पैदा होता है दो शक्तियां विशेष होती हैं, एक याद रखने की शक्ति, एक भूलने की शक्ति। लेकिन जीवन की विडंबना क्या है कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, और जो बात भूलना चाहते हैं वो बरसों तक याद रहती है। ये वास्तविकता है जीवन की। तो हमारे मन में भूलने की शक्ति, किसी ने हमारे साथ खराब किया है, निगेटिव किया है, कोई बात की है, हमारे मन में बदला लेने की भावना ना हो, भूलने की शक्ति हो, उसकी उस बात को भूल जाए, लेट गो कर दें, बस फिर देखो कैसे हम खुद भूल जाते हैं और कैसे उस कोई भी आत्मा हमारे सम्मुख आएगी उसका स्वरूप हम परिवर्तन कर सके। एक ये बात विशेष है। और क्या विशेष है, क्योंकि जब हम कर्मातीत अवस्था की तरफ जाएंगे ना तो दो तीन चिन्ह हमें अपने में स्पष्ट दिखने लगेंगे। बाबा में देखा हमने, हम 17 जनवरी को यहां थे, 17-18 जनवरी 1969, तो बाबा चूंकि कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, तो पहले जब 1963-64 में या 65-66 में 65-66-67 में मिलते थे तो बाबा पूछते थे, बच्चे हाँ क्या हालचाल है, कैसी सेवा है। हम लोग बताया करते थे, बाबा ये सेवा चल रही है हमारा, ये पुरुषार्थ है, ये कमी है, इसके लिए आए हैं, आप डायरेक्शन दो, कहने पर पूछने पर बाबा बताते थे। लेकिन अंतिम दो दिनों में क्या देखा हमने, गौर से सुनना कि जब बाबा के सम्मुख जाते थे कि हम बाबा से ये पूछेंगे ये पूछेंगे, बस बाबा थोड़ा सा यूं दृष्टि दिया, जरा सा बाबा दृष्टि दे के मन के भाव को जैसे जान लेते थे। और बाबा कहते थे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाए। यानी कि प्रश्न भी हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि ये क्यों, क्योंकि बाबा की वो स्थिति थी मन जीते जगत जीत की स्थिति। अपने संकल्पों के ऊपर बाबा ने इतनी विजय प्राप्त कर ली थी। जो व्यक्ति अपने संकल्पों पर विजय पा लेगा ना, वो दूसरे के संकल्पों को भी सहज रीति से पढ़ सकेगा। ये स्थिति तो हम जो भी अपने को चेक करते चले कि पहले तो ये चेक करें व्यर्थ संकल्प तो नहीं है, विकारी संकल्प की तो बात खत्म हो गई व्यर्थ। और जब कोई भी आत्मा को देखते हैं उसके प्रति हमारी कोई बायस्ड फीलिंग न रहे, वो आए और हम बिल्कुल क्षमा भाव से उस आत्मा को क्षमा कर दें, वो आत्मा हमें निर्मल दिखाई दे। और इससे क्या होगा, हम किसी के भी मनोभावों को एज इट इज पढ़ सकेंगे, उसमें अपने मन के भाव मिक्स नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, जब किसी के भी मनोभावों को पढ़ सकेंगे तो हम उस आत्मा की कोई भी इच्छा होगी उसे पूर्ण कर सकेंगे। और इस कारण से यही है मन जीते जगत जीत। ये हमने खुद अनुभव किया 18 जनवरी की रात्रि क्लास में। रात्रि क्लास में उस दिन बाबा ने सुबह क्लास नहीं कराई, ये हिस्ट्री हॉल है, यहीं पर ही बाबा आते थे क्लास कराते थे। तो साकार ब्रह्मा बाबा आए तो देखो, जब कर्मातीत अवस्था के निकट होती है आत्मा, क्या क्या आभास होता है। पहला आभास, उसे ये क्लियर कट आभास होगा कि बस मैं इस शरीर को छोड़ने वाला, मेरा इससे हिसाब किताब पूरा हुआ। और उसके चिन्ह क्या लगेंगे, जैसे बाबा को, बाबा ने उस दिन सुबह से ही ना एक दिन पहले से यीशु दादी को बोला जितने भी पत्र लिखाने हो तुम लिखा लो, कोई काम पेंडिंग ना रह जाए। जो नक्की लेक पे बिल्डिंग म्यूजियम है उसकी फाइल पड़ी हुई थी, बाबा ने कहा कि आओ बच्चे उसको ले लो, उस फाइल पर बाबा की सिग्नेचर हो गया, वो काम पेंडिंग हो गया। जितने रहे हुए काम थे बाबा ने सारे के सारे पूरे किए। और रोज रात्रि क्लास 9:45 होता है बाबा के समय से, उस समय से 8:30 तक सब भोजन वोजन करके और आ जाते थे 9:45 बाबा आते थे रात्रि क्लास। उस दिन बाबा को आभास हुआ, तो इसीलिए बाबा ने पहले ही बोल दिया, जमुना प्रसाद भाई यहाँ पर है उन्हें बुला के, कि सबको इन्फॉर्म कर दो आज बाबा 7:00 ही क्लास ले लेगा। तो सबने जल्दी जल्दी जो भोजन वगैरह 6:30 तक किया और हिस्ट्री हॉल में आ गए, और बाबा भी 7:15 के अंदर आ गए। तो देखो ये बिल्कुल क्लियर कट आभास होने लगा कि वो बाबा को ही, लेकिन बाबा ने कोई बताया नहीं, अवस्था ऊंची नीची कुछ नहीं हुई, बल्कि और खुशी में होती, हाँ अब मैं इस शरीर से हिसाब किताब चुकतू करके आत्मा जा रही हूं, आत्मशुद्धि पूरी हो गई जैसे बाबा की, और तपस्या की भी पराकाष्ठा। बाबा आए कमरे, आप जानते हो बाबा को वैसे कई बार खांसी काफी आया करती थी, और हंसी हंसी में बाबा कहते थे, मैं शिव बाबा को कहता हूँ बाबा मेरा मेरी इस सखी से पीछा छुड़ाओ, ये खांसी मेरी सखी है, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती, इससे पीछा छुड़ाओ। तो शिव बाबा क्या कहते थे, क्या कहते थे, बच्चे ये तो तुम्हारा कर्म भोग है, तुम्हारा हिसाब किताब है, इसमें शिव बाबा कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हें कुछ कंसेशन करूं तो मुझे सब बच्चों के साथ कंसेशन करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये तुम्हें ही इसका हिसाब किताब चुकतू करना है। देखो जिसका तन लिया उसके लिए भी कोई स्पेशल नहीं, तो ये एक शिव बाबा की जैसे कि ना ये सभी बच्चों को समानता की भाव की दृष्टि, तो इसीलिए बाबा वो नहीं करता है। तो उस दिन बाबा की तबीयत थोड़ी ठीक भी नहीं थी, सर्दी का मौसम था, लेकिन उस दिन रात्रि क्लास में बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, एक बार भी गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। पूरे मुरली बाबा ने, नहीं तो बहुत कम ऐसी मुरली हैं जिनमें कि बाबा को कभी खांसी न आई हो या गला साफ करने की, कफ क्लियर करने की कोशिश न करनी पड़ी हो, लेकिन उस दिन पूरी मुरली में एक बार भी ऐसा नहीं। ये किस बात का प्रतीक है? कर्मातीत अवस्था का तो है ही, लेकिन उसमें भी किस बात का कि बाबा ने, मतलब योग बल हमारा जो होगा वो शरीर के सब कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। जो भी शरीर का कर्म भोग है, पहले वो शुरू में तकलीफ देता रहेगा, लेकिन जब हम निकट होंगे कर्मातीत अवस्था के, तो शरीर के सब कर्म भोग के ऊपर बिल्कुल विजय प्राप्त कर लेगा और आत्मा जैसे मक्खन से बाल की तरह शरीर से निकट के चली जाएगी। तो उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। और मन जीते जगत जीत की जो बात मैं बता रहा हूं, सामने बैठे हम भी मुरली सुन रहे थे 18 जनवरी की रात्रि क्लास, तो बैठे बैठे हम भी यंग थे, बैठे बैठे हमें संकल्प आया बाबा कुछ, हम आसाम में पोस्टेड थे, वहां पर क्लासेस चलाया करते थे, एक भी सेंटर पूरी स्टेट में नहीं था, और बाबा ने ही यहां से हमें भेजा था, तो बाबा से बहुत गहरा कनेक्शन जैसे कि था। हर हफ्ते बाबा पत्र लिखते थे और बाबा डायरेक्शन देते रहे, बच्चे ये करो, मंदिर में जाके क्लास कराओ, लेक के किनारे बैठो, वहां म्यूजियम खोलना है उस जगह जाके वहां देखो। हर सप्ताह बाबा का पत्र आया, अभी भी हमारे पास 10 पत्र बाबा के मौजूद है। तो इस रीति से बाबा वहां मुरली सुन रहे थे, मुरली सुनते सुनते हमारे मन में विचार आया, संकल्प आया, क्या ही अच्छा हो बाबा कुछ हमारे बारे में बोले, कुछ बोले जिससे हमारी और उन्नति हो। तो देखो संकल्प इधर उठा, और चूंकि वो आत्मा मन जीते जगत जीत थी, अपने मन में उसके कोई संकल्प नहीं था, इसलिए कहते हैं ना भगवान भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता है। तो कभी ना कभी तो हम लोग अगले जन्मों में द्वापर युग तक, द्वापर युग से कहीं भी भक्त तो रहे होंगे, सतयुग त्रेता में तो साकार बाबा की राजधानी में आए होंगे, लेकिन द्वापर युग से तो भक्त रहे होंगे ना। तो इस कारण से भक्त के मन में संकल्प उठा और भगवान ने पूरा किया। भगवान भक्त की इच्छा सुन के क्या कहता था, कौन से शब्द निकलते थे? तथास्तु, बस एक भगवान अंतर ध्यान हो जाते। ऐसी मन में हमारे संकल्प आया, जस्ट हमने तो गौर भी नहीं किया, ऐसी संकल्प आया बाबा कुछ बोले, तुरंत ही बाबा ने हमारा नाम लेके बस कुछ महावाक्य उच्चार दिया। देखो ऐसे ही करके, ये बच्चा मोहन है, बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे और अंत तक संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसा करके अभी भी टेप के अंदर ना ये बाबा के महावाक्य उसमें भरे हुए हैं। तो भाव क्या है कहने का, कि जो कर्मातीत अवस्था, बाबा कर्मातीत अवस्था को पाया हुआ था, हम सबको भी उसी अवस्था को पाना है। तो इसीलिए बाबा से हम ये ले कि जब हमारी भी कर्मातीत अवस्था होगी, हमारे भक्तों के अंदर जो सभी आत्माएं हैं हमारे, जिनको भी हमारे कॉन्टेक्ट में, हमारे कभी ना कभी भक्त रहे होंगे, तो उनके मनोकामनाओं को हम पूर्ण तब कर सकेंगे जब पहले मन के भाव को तो जाने। भाव को ही नहीं जानेंगे तो उस मनोकामना को पूर्ण क्या करेंगे। और उस भाव को जानने के लिए जरूरी है कि हमारे अपने अंदर कोई भी भाव ना हो, निगेटिव तो नहीं हो, लेकिन कोई भी भाव ना हो। उस मन की स्थिति को कर्मातीत अवस्था के निकट, मन जीते जगत जीत, इसीलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत का है। तो उस अवस्था तक पहुंचने का एक यही है। और कई बार होता है, आप लोगों ने देखा होगा, कोई मन के अंदर बात, हम किसी की बात कर रहे हैं और एकाएक ही वो आत्मा आ जाए, अरे अरे अभी तो हम आपको याद कर रहे थे, अभी तो हम यही, और आप आ गए तुरंत। यानी कि मेंटल कम्युनियन जो है उनके साथ हमारा काफी क्लियर है, कई बार ऐसा होता है। तो ये एक तपस्वी मूर्त आत्मा का एक ये लक्षण है। जीवन के व्यवहार में हम देखते चले हैं कि ऐसा कितने हद तक होता जाता है, क्योंकि हमारी सिक्स्थ सेंस जो है वो अभी ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। आगे आने वाली घटनाओं का हमें आभास होता जाएगा, क्या होने वाला है। अगर हम उस पर ध्यान नहीं दें वो दूसरी बात है, लेकिन आगे आने वाली घटना का आभास जरूर होगा, टिंकल जरूर होगा, करेगी। कई बार हम डोंट केयर कर देते हैं और वो संकल्प चला जाता है, बाद में हमें याद आता है अरे इस बात की तो मुझे पहले ही टचिंग हुई। पर अभी ये बहुत, जितना जितना हमारे मन शुद्ध होता जाएगा उतना उतना आगे आने वाली घटनाओं का। इसीलिए बाबा ने कहा कि बस सब बच्ची सब काम करा लो, पत्र लिखवा लो, जो भी एक भी पत्र ना रह जाए। क्लास को प्रीपोन्ड कर दिया, क्योंकि बाबा को मालूम था अगर नॉर्मल केस में क्लास लेंगे तब तक तो ये आत्मा शरीर छोड़ चुकी होगी। तो बाबा ने 2 घंटे उस दिन क्लास पहले ही प्रीपोन्ड कर ली कि बच्चे सबको इन्फॉर्म कर दो आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा। और बाबा आया क्लास में, और बाबा का बस वही तपस्वी मुहूर्त, ऐसा लगता था जैसे कि कोई फरिश्ता जैसे उड़ के आ गया। एक बार भी कोई स्वरूप। और दूसरी बात कि जब ये हुआ इसके बाद बाबा ने क्लास पूरी कर ली, और क्लास पूरी करके बाबा बाहर निकले, और कमरे के बाहर जाते ही जाते बाबा ने कहा बस अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं बोले, विदा छुट्टी गुड नाइट करके बाबा हमेशा जाते थे। मुरली में भी रात्रि क्लास सुनते होगे ना, अच्छा बच्चों को गुड नाइट। लेकिन उस दिन बाबा ने बोला अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। बाबा गए और फिर बस कमरे में जाके दादी जी के हाथ में हाथ, उसके बाद बाबा ने देह त्याग कर दिया। तो देखो ये इस बात का, चूंकि हम सबको भी इसी राह पर बाबा की तरह साकार बाबा के पद चिन्हों पर चल के कर्मातीत अवस्था को तो पाना ही है, कलप कलप की बाजी है। इसीलिए इसके लिए हमें भी यही करना पड़ेगा, अपनी सिक्स सेंस को थोड़ा पावरफुल बनाना पड़ेगा। बाबा तो रेडिएट कर रहा है, सिग्नल भेज रहा है, अरे बाबा ने कई मुरली में बोला है बाबा बंधा हुआ है बच्चों की रक्षा करने के लिए, तुम चाहो ना चाहो लेकिन बाबा तो ले जाएगा तुम्हें परमधाम। लेकिन ब्यूटी क्या है, परमधाम तो सभी आत्माओं को जाना है, लेकिन हम सारे हिसाब किताब चुपतू करके जाए, बिल्कुल धर्म राजपुरी से जैसे हमारा कोई कनेक्शन ना हो और सीधा वहां चले जाए, कोई भी यातना भुगतनी पड़े। ब्यूटी तो यही है। तो बाबा ने भी उस दिन बस यही देखा और जो जो मन में आया वो करेगा और उसके बाद चले गए। लेकिन उसके बाद भी ये तो मन जीत का लक्षण हुआ, क्योंकि मन के संकल्प बाबा ने पढ़े पूरे कर दिए, अपने मन में जो बात आई वो सारा दिन वो हुआ। लेकिन जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ने के बाद बाबा का वो शरीर रखा रहा पूरे 18 तारीख की रात, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर को संस्कार किया गया। लेकिन बाबा केवल मन जीती नहीं, प्रकृति जीत भी बना, क्योंकि हमने देखा उस समय कोई बाबा को कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता हुआ, कोई शरीर में दुर्गंध नहीं। अब 65-70 घंटे तक शरीर रखा रहे, 2-4-6 घंटे के बाद ही शरीर काला पड़ जाता है, दुर्गंध आने लगती है, लेकिन बिल्कुल कोई भी दुर्गंध नहीं, कोई काला नहीं। और बाबा को हम लोगों ने स्नान कराया तो बिल्कुल बाबा के शरीर में काफी हद तक जैसे ना फ्लेक्सिबिलिटी थी, अकड़न थोड़ा थी लेकिन फिर भी देखा गया कोई भी ऐसी अकड़न नहीं जैसी नॉर्मल लौकिक दुनिया में होती। तो ये प्रतीक है, प्रकृति जीत का प्रतीक, 5 तत्वों के बने हुए शरीर के प्रकृति जीत का प्रतीक। तो हमको भी सबको प्रकृति जीत बनना है ना, क्योंकि प्रकृति जीत बनेंगे तब हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकेंगे। भीष्म पितामह का गायन है ना, उसने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा। अगर हमने भी कोई बीमारी से या कोई अर्थक्वेक आया उसमें शरीर छोड़ दिया, सुनामी में या फ्लड में शरीर छोड़ दिया, तो क्या ब्यूटी हुई, वो तो अंतमते सो गति होगी नहीं हमारी, उस समय तो हाहाकार चीत्कार चारों तरफ मची होगी। हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, हाँ बाबा अब मैं आत्मा, मेरा हिसाब किताब पूरा हुआ, अब मैं आपके पास आ रही हूँ, जैसा ब्रह्मा बाबा का देखा ना, उसके लिए क्या करना है, ये प्रकृति के जो गुण है ना उनको धारण करना है। और आज हम सिर्फ एक गुण देखेंगे कि गुण प्रकृति का, उसको अगर हमने प्रकृति के साथ मित्रता कर ली तो प्रकृति हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी। अर्थ को एक आया, प्रकृति में धरती में सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है, कौन सा, सहनशीलता और समाना। और प्रकृति का सबसे बड़ा गुण है दातापन का, पृथ्वी हमेशा देती है। जमीन से देखो अनाज फल फूल मिट्टी ये तेल पानी सब निकलता है, ऐसे ही पृथ्वी दाता है, हम भी दाता बने। हमारे सम्मुख जो आए वो खाली हाथ ना जाए, कोई स्थूल चीज की बात नहीं। अभी भी यहां परंपरा जैसे गिफ्ट की चली आ रही है बाबा के घर में, लेकिन हर एक की अपनी लिमिटेशन है, तो हम दाता बन के देते चले। क्या दाता दें, शुभ भावना, शुभकामना, सहयोग, सद्भावना, पॉजिटिविटी, इसमें तो कोई पैसा खर्चा होता नहीं, प्रेम, हर एक आत्मा को हम ये देते चले। हमारे सम्मुख आए तो पृथ्वी का गुण जैसे मैंने धारण कर लिया, तो पृथ्वी में जितने भी अर्थक्वेक आएंगे ना, पृथ्वी हमारे विनाश का कारण नहीं बन सकती, मृत्यु का कारण नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को हमने मित्र बना लिया, और मित्र मित्र की सदा रक्षा करता है, वो कभी भी उसके प्राण नहीं लेगा। तो ये पृथ्वी का गुण एक, अभी हम बहुत गुण होते हैं लेकिन आप सोचना, वो इसी तरह अर्थक्वेक हमारे मृत्यु का कारण नहीं। दूसरा गुण, जल का क्या गुण है, क्या गुण है, बहता रहता है। और जल का सबसे बड़ा गुण है शीतलता भी है, लेकिन सबसे बड़ा गुण है एडजस्टमेंट। गिलास में लो, गिलास में एडजस्ट हो जाएगा, कटोरी में लो, चम्मच में लो, ऐसे हम में भी एडजस्टमेंट का संस्कार हो, हर आत्मा से हम एडजस्ट होके चल सके, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो चाहे जल का, अभी आजकल बहुत बादल फटते हैं, जल का ना सुनामी आए, फ्लड आए, पुर आए, जितना हो, जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, एडजस्टमेंट का संस्कार। वायु का क्या संस्कार है, हल्केपन का, वायु हर चीज को ऊपर उड़ा के ले जाती है, ऐसे हम सदा हर परिस्थिति में हल्के रहे, भारी ना हो। तो अगर ये संस्कार हमने पक्का कर लिया तो चाहे जितना भी साइक्लोन आएगा, तूफान आएगा, 250-300 किलोमीटर रफ्तार से वायु पवन बहेगा, लेकिन उसके कारण हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वायु तत्व को हमने मित्र बना लिया, ये भी देवता है, इसीलिए जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, ये सब कहा जाता है ना। आकाश का सबसे बड़ा गुण क्या है, विशालता, महान। तो अगर हमने भी हृदय में विशालता रखी, किसी की कमी कमजोरी को स्थान नहीं दिया, और हृदय के अंदर विशालता रखी, तो क्या होगा, आकाश मार्ग से आने वाली चीजें हमारी दुख अशांति मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि आकाश मार्ग से रॉकेट मिसाइल बम और बहुत तेज बारिश बादल फटना ये सब कुछ होगा, लेकिन बाबा ने कहा है मैं बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ हूं, ऑटोमेटिकली हमारे पैर उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, ऑटोमेटिकली, सोचना नहीं पड़ेगा बस, लेकिन हमारा तन और मन ये शुद्ध और पवित्र रहे। और अंतिम कौन सा तत्व रह गया, अग्नि, सूर्य देवता, जिसमें कि ये इसकी बात करी, तो जो आत्मशुद्धि होती है सूर्य ना, तो उसको अगर हमने सूर्य की तरह अग्नि तत्व का ये गुण धारण करा होगा, कोई भी आत्मा आए हमारे सम्मुख आए, और मेरा ये योग का ये जला हुआ होगा ज्वालामुखी योग पावरफुल, तो वो आत्मा हमारे दुख अशांत आएगी, उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि मेरा अग्नि स्वरूप है ना। इस कारण से किसी भी आत्मा के भगवान के सामने कहते ना, हमारे दुख हरो प्रभु, हमारा ये दो, कोई भी वरदान मांगने आती है, हम दुनिया के सामने उनके इष्ट देव हैं, भगवान स्वरूप हैं, हमारे सामने आत्मा आएगी, उसे कहने की जरूरत ना पड़े, लेकिन उसके मनोभावों का वाइब्रेशन तुरंत हम जान करके उसकी इच्छा को पूर्ण कर सके जो भक्ति मार्ग में है, तथास्तु। उसकी इच्छा पूर्ण, तो जब उसकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी नेचुरली वो आत्मा जाएगी, रोती हुई आई हंसती हुई जाएगी, दुखी आत्मा आएगी सुख का अनुभव करते हुए जाएगी। ये साकार बाबा में हमने अनुभव किया, और उसका कारण क्या है कि जो आज का विषय था, बाबा ने अपने पुरुषार्थ को, आत्मशुद्धि को इतनी चरम सीमा तक 33 वर्षों में पहुंचा दिया, और वही तपस्वी मुहूर्त जो गहन साधना, उसके आधार पर बाबा ने अपना करा। अब ये विषय तो बहुत लंबे हैं, लेकिन ये खास अनुभव करने की चीज है, इसीलिए हम तो ये महसूस करते हैं आप सब यहाँ पर आए हो, और ये खास बाबा के कमरे में, और ये अनुभव करके जाना, बाबा को अपनी कोई भी बात हो वो लिख करके दे के जाना, भले अपना नीचे चाहे नाम ना लिखो चाहे जगह ना लिखो, बाबा तो जाने, लेकिन दिल खोल के बाबा के सामने अगर हमारी कोई कमी कमजोरी है, हम समझते हैं मुझे 20 साल 30 साल हो गए, बाकी सब पुरुषार्थ हो गया, लेकिन ये संस्कार मेरा अभी तक नहीं गया, ये क्यों, अपने बल से मैं पार नहीं कर सका, तो आओ बाबा की शक्ति से उसके सहयोग से उसे पार कर ले। सच्चे दिल से लिख करके जाओ, बाबा मेरे इस संस्कार को आप को दूर करना है। बस बाबा के कमरे में जाओ, मन में कोई ये भी ना रहे चिंतन, अरे मैंने नाम लिखा जगह लिखी, वो भी मत लिखो, नाम भी नहीं लिखो जगह कुछ भी नहीं लिखो चाहे, लेकिन वो लिख करके डाल देंगे। हमारा तो ये अनुभव है, यहाँ हजारों लोग आते हैं जो इस तरह करके जाते हैं, बस उसके बाद वो अपने उन कमजोर संस्कारों से मुक्ति का अनुभव करते हैं। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। ऐसी मीठी मीठी रूहानी बातें कहाँ सुनने मिलेगी, सुनने मिलेगी। ऐसे साकार की पालना वाली आत्माएं अभी बहुत थोड़ी है, और थोड़े समय में सागर को घाघर में भरना, कितना रह जाएगा कितना दे, तो भी जितना हो सके उतना कवर अप किया मोहन भाई ने। बाबा की अंतिम स्टेज, ऐसे हम सभी भाई बहनों की भी अंतिम स्टेज आएगी, लेकिन बाबा ने कैसे पुरुषार्थ किया उसकी सारी डिटेल में भाई साहब ने हम सभी को बताया, अनुभव भी कराया, और कैसे पांच तत्वों के साथ हमारा कनेक्शन होगा तो वो अंतिम समय पर हमें हर्ट नहीं करेंगे, कितनी बड़ी बात है। इसलिए मुझे एक और बात याद आ गई पुष्प शांत दादी की भी, कि पुष्प शांत दादी हरकृष्ण दास हॉस्पिटल में एडमिट थे बॉम्बे में, तो उन्होंने भी कहा था कि सभी मोहिनी बेन जो कोलाबा में है, कि जाओ सभी को टोली और सौगात दिया, लिटरेचर दिया, सभी डॉक्टर्स को नर्सिस को, मैं 8:30 बजे शरीर छोड़ने वाली हूँ सुबह। मोहिनी बहन तो सभी को देख करके आई और बोल के भी आई कि दादी 8:30 बजे जा रही है, तो सारे डॉक्टर चौक हो गए कि ऐसे कैसे, तो तुरंत सभी इकट्ठे हो गए और ठीक 8:30 बजे हुआ दादी ने शरीर छोड़ दिया। तो ऐसी महान आत्माएं जो अपने कर्म के ऊपर टोटल विजय प्राप्त की है, उन्होंने इतिहास गवाह है, हमारे सारे पूर्वज जसंत्री दादी हमारी अमृत वेले ही योग में बाबा के पास बैठ जाओ बाबा ने कहा तो बैठ गई वतन में। तो जितना जितना न्यारे होते जाएंगे कर्मों से देते जाएंगे, तो आत्माओं की अंतिम अवस्था भी यही होगी। इसलिए भाई साहब का बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।